उनके सामने में प्रकट हो गए। बोले जी क्या चाहिए? तो प्रभु आज तक हमने कुछ नहीं मांगा, आप यदि प्रसन्न है तो बस अपना रूप दे दीजिए। बस ये ठीक, जैसे आपकी आपका कल्याण होगा वैसा ही करो। उन्होंने उस समय जोग माया से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, नहीं समझे, भ्रष्ट मने नहीं मैंने मोहित हो रही थी, नहीं तो भगवान की लीला नहीं है, नहीं समझ सके। कभी कभी अपने गुरु जी की हितकर बातों को भी हम नहीं समझते, ऐसा मत करना। तो कहेगा जी हम ऐसा ही करें, तो जाओ क्या करेंगे जी? दूसरों से गुरु जी से भी प्रिय दूसरा बन जाता है, संतों से भी प्रिय कोई दूसरा बन जाता है, उससे अपने मन की बात कहते हैं, गुरु जी से नहीं कहें। अब गुरु जी तो पहले से जान करते हैं, वैसे हम लोग जान रहे हैं। माता से अधिक जो भी प्यारी है तो क्या है? डाइन है। माता से अधिक कोई प्यारी है? संसार में विश्व ब्रह्मांड में गुरु वैसे ही तो हमारे सबसे अधिक प्यारे हैं, जो कि परमात्मा ने हमारी उंगली पकड़ करके ले जाए। उनसे भी कोई प्रिय है? यदि प्रिय हुआ तो परमात्मा से तो। प्रभु जी ने कहा जी कहिए आपका मैं कल्याण करूंगा, जैसे आपका कल्याण। उन्हें सोचा जी शादी करना ही हमारा, यदि शादी हो जाए इसमें कोई सहायता देते, ये सबसे बड़ा कल्याण है। अब प्रभु जी ने देखा जिससे क्या कल्याण ऑपरेशन से होगा, एक ही बात दो रूपों में देखा बस। प्रभु संत ध्यान हो गए और प्रभु ने उनका खूब सुंदर चेहरा देखा। ये आगे जा करके बैठ गए जिधर में वो आ रही थी लड़की, हाथ में गले माला, इस पोज से चल रही थी, ये सभी लोग देख करके उसे मुग्ध हो रहे। जब इनके सामने आई तो सोचा जी अब तो गले में माला ही पड़ेगी, और निकट आया तो वो नाक सिकुड़ कर दूसरी तरफ जिधर जाते हैं उधर से ही हट गई और दूसरी तरफ ये देख नहीं रही, निर्लज्ज हो गए, बेहाया जैसे। उस समय हाया बेहाया निर्लज्जता कर ऐसा ये थी। फिर उनके साथ में दो थे आदमी शिव जी के गण, वो थोड़ा सा वाह 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 क्या रूप है, कहीं बस रूप का खजाना है, और उनको वाह वाह कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में वहां पर एक विमान उतरा, उसमें विष्णु आए उनके आराधना लगी, और देखते देखते लड़की ने उनको जयमाला दे दी और उसको उन्होंने गरुड़ पर बैठाया और उसको लेकर के ले। जिसको सारा जीवन मैंने आराधना जिसकी मैंने की, और उसने हमारे साथ में इतनी बड़ा भारी धोखा घड़ी थी, ठीक नहीं इसका फल जाता आगे नाथ न पीछे पगह, जिसके आगे नाक
नाक
नाक नाक ओए नाक माने नाक में जैसे भालू को लगा देते हैं इतना बड़ा भारी जानवर उठा, और उसको नकेल पहना करके उसको इसको और थोड़ा सा खींचे, छोटा सा बालक भी खींच देगा तो क्या होगा, उधर मुड़ना पड़ेगा। ऐसे ही इनके आगे न नाक है न पीछे पगड़ा, घोड़े को अगाड़ी और पिछाड़ी से बांधते हैं, जानता है अब तो घोड़े ही नहीं, अगाड़ी इसको दो तरफ से रस्सी लगा करके गले में एक उधर खूंटे में बांधते हैं, और पीछे पैर में दो रस्सी बांध करके पीछे खूंटा गाड़ करके बांध, क्यों घोड़ा बैठने जाए आगे पीछे न जाए लोट न जाए, यदि लोट लिया घोड़ा शादी में और बैठ गया तो गड़बड़ हो जाए। तो तो इसके आगे ना नाथ है ना पीछे पगहा आता, इसको कंट्रोल करने वाला विश्व में नहीं है, ये स्वतंत्र है, स्वराज है। इसको शिक्षा देने वाला कोई आज तक मिला नहीं, आज इसको भरपूर मैं शिक्षा देता हूँ। कहा जिसके लिए मैं सड़क रहा हूं, तुम भी उसी के लिए तड़प रहा। अभी संपात कर दिया, अब संपात करते उनके पास में मैंने पहुंच ही गए और पहुंच करके बड़े क्रोधित हो गए बैकुंठ, और उनको सामने ये बात कही, तो प्रभु ने अपनी माया जो माया को हटा दिया, और हटाते ही देखा अरे न कोई स्वयंवर न कोई कुछ, वो लक्ष्मी जी स्वयं लक्ष्मी जी है और ये स्वयं भगवान है। अब इनको होश आया और भी करके से रोने लग गए, भी गिराने लगे। प्रभु ने कहा जी कोई बात नहीं, मैं यही चाहता। नारद जी ने देखा मैं भी तो यही चाहता जी प्रभु जगत में अवतार, इसलिए नारद जी का अभिषम का पूर्ण करने के लिए, नारद जी की प्रार्थना को पूर्ण करने, जगत का कृपा करने के लिए वो मैं भी बंधन में डोलूंगा उस स्त्री के लिए जिसके लिए नारद जी खुद हो गए। वही लक्ष्मी जी सीता जी होकर के आई और वही भगवान रामचंद्र जी के रूप में। इसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं, पहला अभिमान भी नहीं होना चाहिए, कोई हृदय में कपटता नहीं होनी चाहिए, नम्र हीन दीन हीन बन करते रह, तुमको अच्छा नहीं लग रहा जिम भाई आ रही अलग से हो रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, बाजार में अभी वहां जाएगा तो चला जाएगा, उसमें बड़ा हरी कथा में बैठना और हरिनाम करना बड़ा सबसे बड़ा परिश्रम है, ये समझ लो। आदमी फांसी पर भी भूल जाएगा किंतु चुपचाप बैठ करके हरी कथा सुनना और हरिनाम करना चित्त लगा करके, ये उससे भी बहुत बहुत अधिक है, बड़ा भारी कठिन है ये। तुम लोग भगवान से प्रार्थना करो जो हरी कथा में रुचि आए और भगवान के नाम में रुचि आए, जब तक रुचि नहीं आएगी तब तक कुछ सुकृति के काम है, अभी भक्ति का अंग नहीं है। हरिकथा भक्ति है, भक्ति का अंग नहीं, स्वयं भक्ति है, किंतु कुछ सुकृति नहीं होने से उस अंग में या भक्ति में उसमें रुचि नहीं है, रुचि होना बड़ा बड़ी कठिन। ये एक कारण। दूसरा दोनों ने कहा रूप तो देखिए, तो रूप देखा जले हुए मुख का जैसे बंदर होता है हनुमान लंगू, वो उन्हें मुख देखा और वो जो चित्रकारी मार रहे थे जी के घर, उन्होंने उनको भी संपात दिया था कि तुम लोग बंदर होकर के जन्म लेगा, तुम खिलखिला करके हंस रहा था ना, दांत खिला रहा बंदर होकर के जन्म लेगा। तो हनुमान जी तो वही शिव जी के कारण लोग बंदर लंगूर भालू पति ये सब लोग, और उन्होंने कहा
यही रूप तुमको
तुम्हारी सहायता करेंगे, किसकी विष्णु को कहा था अभी संपात करते हैं, ये तुम बंदर तुम्हारी स्त्री हो जाएगी और उसके पीछे पीछे तू बंदर में डोलेगा रोएगा, और यही जो बंदर होंगे ये तो आपकी सहायता करा जैसे हमारी अभी सहायता कर रही होंगी, तो वैसे ये कारण एक बन गया, किंतु यथार्थ में वो भगवान को अवतरित कारण है, ये पहला कारण। दूसरा कारण रहा कोई राजा था भानु प्रताप उसका नाम, उसे किस रामायण में आया, तो उसका एक कोई शत्रु था
हरिमर्दन,
हरिमर्दन नाम का कोई राजा था, इसको उन्होंने हरा दिया और वो भाग करके जंगल में चला गया। कुछ दुष्ट असुर मायावी असुरों के साथ में वो मिल गया जो कि माया की विद्या जानते थे, और उनसे मित्रता करके इसको राज्य ध्वस्त करने के लिए उन्होंने एक कौशल रचा। वो उनका पुरोहित बन करके आया, वो जो मायावी था
कालनिनी,
उनका पुरोहित बन करके आया और कहा कि आप यज्ञ कीजिए, आप चक्रवर्ती साम्राज्य हो जाए सम्राट। और उसने कहा कि सब ऋषि महर्षियों को निमंत्रण दीजिए, और ऋषि महर्षियों को निमंत्रण दिया। जब सब ऋषि लोग आ गए तो उनके लिए भोजन बनेगा, तो उसमें गाय का मांस मिला दिया भोजन में, और उसके तरह तरह के व्यंजन बनाया, किसी को पता ही नहीं चला। जब ऋषि लोग खा लिया थोड़ा सा, तब वो लोग देखा अरे तो गाय का मांस है, बड़े खुशी से सुभ्रस्त हो जाते, भ्रष्ट हो जाते। कहा कि साथी बहने तो कुछ किया नहीं इन लोगों ने, अब चंपा क्यों दिया? तो देखा जो अरे ये तो बहुत मेरे हिसाब से छल हुआ, वो अरिमर्दन राजा उससे मिल गया कालनिनी से, और दोनों ने मिलकर के षड्यंत्र करके हमें को ये भ्रष्ट करा है, ऋषियों को मन अपने आप रसोई बनाने वाला भी वो बन गया, और रसोई बनाया मांस का उनको खिला दिया। किंतु थे वो भगवत भक्त थे, ऋषियों ने कहा जब ऋषियों के चरणों में गिर गए, उन्होंने अभी संपात पहले दिया था, जाओ तुम असुर होकर के जाओ जन्म सफेद, वही राजा रावण हुए। और कालनिनी सर वही कुंभकर्ण बना, वो दूसरे सब नाम बहुत बदलते हैं, बहुत नाम बदलते हैं, बहुत कितने नाम है, दशरथ नाम के कितने राजा हो गए, एक दो में बहुत। कोई कुंभकर्ण बन करके आए और कोई ये भानु प्रताप राजा वो हुआ, रावण इनका भाई हुआ कुंभकर्ण, और सब ऐसे ही होकर के आए, और उन्होंने सीता जी का हरण किया। विभीषण कोई भक्त इसमें सबका वर्णन नहीं है, इसमें कोई भक्त
इन दोनों में जल्दी है।
तो इस तरह से ये दूसरा कारण, और भी कुछ कारण, सबको सठ कोटि रामायण है। कल्प भेद हरि कथा सुहावा, कल्प के भेद से रामचंद्र जी की बहुत सी कोटि कोटि प्रकार की लीलाएं हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर भी है, जैसे कृष्ण की लीलाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है, किसी कल्प में वो गए हैं मथुरा में और फिर लौटे नहीं द्वारका से, और किसी किसी में लौटे हैं, कुछ में किसी इधर उधर की भी थोड़ा सा चेंज है, कथाओं में चेंज होना स्वाभाविक कल्प भेद से। तो इसलिए ये एक कल्प के कारण नहीं, किसी एक कल्प में नारद जी का मुंह, किसी दूसरे कल्प में भानु प्रताप जी का, तीसरे कल्प में कुछ और, इस तरह से ये रामचंद्र जी जगत में पधारे। वाल्मीकि जी अपने पूर्व जीवन में व्याघ, कहीं पर व्याघ और कहीं पर लिखा है कि वो कौन से ऋषि के लड़के, चवन ऋषि के वो लड़के थे, ब्राह्मण थे, बड़े पितृभक्त इत्यादि, और वही कालांतर में नारद जी की कृपा प्राप्त करके, ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त होकर के तमसा के किनारे आश्रम बना करके थोड़ा के तमसा कहीं प्रयाग के पास में, वहीं पर उनका आश्रम के पास में बहुत से वाल्मीकि जी के आश्रम, जैसे हमारे कितने आश्रम हैं। महाराज यदि कोई मुझसे पूछे या हमारे गत होने पर पूछे, अच्छा महाराज जी कहाँ रहते थे, तो कोई कहेगा जमा से, आज जिसने हमको चिचुड़ा में देखा है वो कहेगा क्या, किसी ने देखा जैसे ये तो पूरी में रहते थे, पूरी में कोई देखेगा जो नवद्वीप में, कुछ दिन हम मद्रास में थे, कुछ दिन बंबई में थे, कुछ दिन कहाँ थे, अब कौन सा नवद्वीप में अधिक, कुछ दिन सीधावाड़ी में थे, जंगल पहाड़ पर्वत पर कहाँ कहाँ थे। और अब यदि कोई कहे कि महाराज जी रहते थे सीधावाड़ी में पर्वतों में, तो ये गलत है। तो यदि हमारे जैसे साधारण आदमी के इतने आश्रम और रहने के स्थान हो सकते हैं, तो जो जो हजारों लाखों वर्ष जिनकी आयु थी वो वाल्मीकि जी कोई एक आश्रम में रहते थे, रामचंद्र जी की जहां जहां पर लीलाएं हुई हैं उन सभी स्थानों पर हो सकते हैं। इसलिए चित्रकूट में भी, दंडकारण्य में भी, तमसा नदी के किनारे और सब स्थानों पर वो रहते थे। तो जिस समय रामचंद्र जी ने पार किया प्रयाग में गंगा को, उस समय वो तमसा नदी के किनारे ही, जो जब गंगा से कुछ दूर पर ही थी, बड़ा रम्य रमणीय स्थान था, वहीं पर हो सकता है कि वो सीता जी जहाँ पर अंत में वनवास में आई वहां, वो भी गंगा के इस पार में अयोध्या से उस पार, वहां पर सीता जी को उन्होंने रखा था अपने आश्रम में। इसलिए उनके कितने भी कितने आश्रम थे, तो तमसा नदी के किनारे बैठे। कुछ लोगों का कहना यह है शास्त्रों में कल्प भेद कि कोई एक ब्राह्मण का लड़का दुसंग में पड़कर के बहेड़िया बन गया, हत्या करने में भी वो ठिठुरता नहीं, चोरी बदमाशी सब कुछ करता। पहले के लोगों अधिकतर दुसंग में पड़ने से डकैत ही अधिक होते थे, क्यों, लोगों को लूट करके अपनी जीविका चलाते थे और कोई साधन वैसा था नहीं, मारते मारते लोगों को कुएं भर गए जनेऊ से, इतना आदमियों को मारा उन्होंने, लूट लेते। नर जी किसी प्रकार से प्रसंग वर्षत वहां पर आए, मारने के लिए अपना मुगर उठाया, उन्हें ठहरो, बस उनके उनका हाथ जहां था वहीं पर ठहर गया।
ये ब्राह्मण और साधु लोग कौन सा अपराध किए हैं जिससे कि राक्षसों ने मारा?
ब्राह्मण उसी तरह के होंगे, अपने कर्म के अनुसार में वैसा ही फल होगा। अभी साधारण साधक एक है, मान लो कि भगवान का भजन कर रहा है, कली स्थिति में उसका कर्मफल भी तो कुछ है, और मरना तो पड़ेगा ना, मरना तो जरूर पड़ेगा, किसी न किसी बहाने से उसको जाना है। मान लो कि हम लोग भजन कर रहे हैं, हम लोग जाएंगे कि नहीं, रोग होगा कि तो यह कर्मफल नहीं है। तो उसी तरह से हो सकता है कि वो लोग साधक हों और पहले जन्म का कर्म इत्यादि हो, उनसे मारे गए। रामचंद्र जी जब भजन करने के वहां पर गए दंडकारण्य में, देखा जो सब ऋषियों का हाड़ मांस खा लिया है और उनका हाड़ एकदम
पर्वत,
तब देख करके कहा भुजा उठाए प्राण किन्न, निशाचरों से रहित मैं पृथ्वी को कर दूंगा, क्या है निशिचर भीन करो वही भुज उठाए करने की। तो वो जाना तो है, इसलिए कोई कर्मफल भी हो सकता है या भगवान की इच्छा भी ऐसी हो सकती है, ऐसे हुआ ध्यान कर हुआ उनका। तो वो देख करके नारद जी उनको स्तंभित कर दिया, जैसे ये जो तो पाप करता है इसका फल कौन भोगेगा, तू भोगेगा कि घर वाले, किसके लिए कर रहा था, घर वालों के लिए, घर वाले इसका फल भोगेंगे। तो जाकर के पूछा, उन्होंने कहा ये बहाना बनाना चाहता है, अरे नहीं हम नहीं जाएंगे। अच्छा तो हमको बांध करके जाए। बस उनको बांध करके घर गया, स्त्री से पूछा, पिता से पूछा, मैया से पूछा, सबसे पूछा। उन्होंने कहा नहीं, हमने तुम्हारा पालन पोषण किया है या हम आपने हमको ले आया है, इसलिए आप। स्त्री ने क्या कहा, आपने हमारा हाथ पकड़े हैं, इसलिए जो कुछ होगा जैसे भी आपको परिवर्तित करना है, मैं उसके फल में नहीं जाऊंगा। पिताजी ने कहा हमने तुमको हमारा पालन पोषण किया है, इसलिए तुम कैसे हमारे पालन पोषण करता है इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं अपने कर्म का हूं, तुम अपने कर्म का। तब उनके सामने आया, उनको दिखाया जी जितने को मारा है वो सब लोग खड़े हैं अस्त्र शस्त्र लेकर के, जन्म जन्मांतर उसके लग जाएंगे। आप लोग जो पाप करते हैं उसका फल भोगना पड़ेगा ही निश्चित। ऐसा मत समझिए जैसे हरिनाम लेने से दुहाई हो जाएगी, यदि ऐसा समझेंगे तो अपराध हो जाएगा, किसी को नाम अपराध का नाम बोले तो ऐसा मत समझना। इसलिए खूब सावधानी के साथ में, कोई भी पाप न हो, मन के द्वारा भी नहीं हो, शरीर के द्वारा तो क्या। कभी झूठ मत बोलो, विशेष करके गुरुजनों से एकदम झूठ मत बोलो, कपटता मत करो, छल छंद मत करो, चोरी मत करो, अपना हृदय खोल करके रख लो, ये हमारा हृदय है, ये सब कुछ ऐसा होने से। और यदि उनसे कपटता छल चातुरी करोगे तो वो और समझ जाएंगे जरूर। एक मध्यम अधिकारी भक्त समझ जाएगा तो उनकी तो बात ही क्या, वो समझ जाएंगे। और ये कहां तक जाएगा मामला, प्रभु कहेंगे हमारे भक्तों से ये ऐसा छल छंद करता है, कौन कहेगा। वैष्णव लोग क्षमा कर देंगे, उनकी चरणों की धूली नहीं क्षमा करेगी और प्रभु भी नहीं क्षमा करेंगे। खूब सावधानी के साथ में हम लोग रहेंगे, इस जन्म में कोई ऐसा बात नहीं हो जो दो पैसे के चीज के लिए हम लोगों से छिपाएं, दुराव रखें और हृदय में कुछ रखें, उनसे मत छिपाओ। डॉक्टर के यहां जाएगा क्या हुआ है बतलाना, या लड़की नहीं बतला रही, उसे किसी अंग पर ऐसा घाव हुआ है जो दिखलाने लायक साधारण आदमी नहीं थे, डॉक्टर पूछ रहा है, डॉक्टरानी पूछ रही है, और हम क्या, हम बतलाने रहे, क्या होगा, रोग अच्छा होगा। वो समझ जाने पर भी वो नहीं कहेगा और अच्छा जा ठीक है, तुमको कोई रोगी नहीं है तो क्या बात। इसलिए डॉक्टर से अपने रोग को मत छिपाओ और गुरु से अपने मन की भावनाओं को भी मत छिपाओ, उनसे कोई दुराव मत रखो, पर्दा हटा दो। गोपियों का तीर हरण का तात्पर्य यही है, क्या है, पर्दा हटा दो। अरे जिसको सभी सभी कुछ समर्पण कर दिया उसे अब फिर लज्जा की बात क्या रही है, कुछ लज्जा की बात। और यदि उस प्रभु से ही, पति से ही, परम पति से ही लज्जा रख दिया है तो फिर क्या बात रही, तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए न तो उनसे डरने की जरूरत है, न उनसे संकोच करने की जरूरत है, अपना रोग उनके सामने एकदम रख दो खूब आनंद के साथ में। आंख भी बंद मत करो, जैसे दुर्योधन ने बंद किया ना, दुर्योधन ने यहाँ पर ऐसा करके के ढक लिया अपनी मैया से जिसने जन्म दिया है, तो हो गया क्या, सब लोग सब कुछ वज्र हो गया, किन्तु महाराज क्या क्या वहां पर कमल का फूल जैसा एकदम कोमल रह गया, वहीं पर लगा हुआ वहीं से मरा। इसलिए खूब सावधानी के साथ हम तो क्या बतला रहा था, नारद जी, नारद जी का
ना
वाल्मीकि जी
का,
तब इसके बाद उनको दिखलाया अपने जो गलते और फिर उनमें एकदम परिवर्तन हो गया। कहा जैसे यहीं पर बैठ करके राम राम करो, राम राम नहीं आ रहा था, मरा मरा करते हुए भी राम राम आ रहा। कुछ दिनों के बाद नहीं, जबकि भगवान नाम की सिद्धि हो गई, तब तक नहीं उठे, तब तक अपने गुरु जी का आदेश पालन किया नारद जी। इसके बाद उनको नाम करते 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 बीच में नारद जी फिर आए, उन्होंने उनको क्रम सब धीरे 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 बढ़ाया। एक दिन जब वो ऋषि हो गए, काफी समय बीत गया, शमशान नदी के किनारे अपने शिष्य भारद्वाज को लेकर स्नान करने को लिए गए। कमंडलू और कपड़े किसके पास थे?
भरद्वाज
के पास। और उसी भगवान नाम का स्मरण करते 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 भगवान की चले गया। अभी तक तो हमको ज्ञान है, विज्ञान नहीं हुआ। ये विज्ञान कैसे? जिस साधक को ज्ञान को विज्ञान में परिणत करने की इच्छा नहीं है, लालसा है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जैसे ज्ञान, मैं भगवान को शक्कर रस से, दासर रस से, बासल रस से या श्रृंगार रस से भजन कर, जब तक अपना स्वरूप नहीं उदित होगा सिद्ध, और भगवान का उस रस के अनुकूल विषय का के स्वरूप में प्रकट नहीं होंगे, तब तक होगा। यशोदा मैया को यदि गोपियों को यदि बाल गोपाल के रूप में दर्शन नहीं, तो उनको तृप्ति होगी? नहीं होगा। उनके लिए ये नहीं होगा। उनके लिए कब तृप्ति होगी? जबकि 64 गुरुओं से युक्त वो कौन नायक कहलाता है? ललित नायक के रूप में जब भी उनको दर्शन देंगे तब तो होगा। और फिर ललित नायक के रूप में किसको दर्शन देंगे? यशोदा जी को देंगे न? श्री दाम सुबल को देंगे न? किसको देंगे? उनको ही देंगे, और किसी को नहीं। इसलिए साधक को यदि उत्कंठा न रहे इस विषय का, जो उसका दर्शन करें, हे देव, हे हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाम, हे रमण, हे नयनाथ, हा हा पदां भवितासि, हा नाथ रमण, क्वासि क्वासि महापुरुष, ऐसे हाहाकार यदि हृदय में नहीं होगा, तो न तो वो दर्शन देंगे, न तो वो ज्ञान विज्ञान के रूप में परिणित होगा। हाहाकार हृदय में होना चाहिए, उत्कंठा समुत्कंठा होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये साधन ही नहीं। अब तक उनको ज्ञान था, विज्ञान नहीं था। तत्व ज्ञानी हो गए थे, समदर्शी हो गए हैं, 26 गुण भी आ गए हैं, कृष्ण के शरण भगवत शरण शरणागत भी हो गए हैं, किंतु ज्ञान अभी विज्ञान कोई नहीं। इसी समय में कुछ भगवान की कृपा हुई। जब नदी के किनारे पहुंचे, कपड़े रख लिए गए, अब नदी में प्रवेश करेंगे या प्रवेश करके स्नान कर रहे हैं, और इसी समय में उनका ध्यान गया, कौन पक्षी मिथुना दोनों एक साथ में डाल कर बैठे हुए, बड़े प्रेम के साथ में चोंच में चोंच मिला करके बैठे हुए हैं, आवाज कर रहे हैं। उसी समय में एक बहेली ने बाण मारा और वो जाकर के पुरुष कौन को लगा और वो झट लुढ़क गया, खून से लथपथ होकर के, और छटपट छटपट करता हुआ प्रणाम। इनसे देखा नहीं गया, कोमल हृदय लाफादी को मारा तब तो कुछ नहीं हुआ, आज एक पक्षी को मारा गया और वो खून से लथपथ होकर के गया, तो हृदय करुणा से भर गया और क्रोध भी हुआ। पहले हुआ करुणा, अब करुणा के साथ साथ में हो गया क्रोध। क्यों करुणा हुआ? उसको देख करके क्रोध हो गया, जिस मरने वाले को देख करके, दोनों एक साथ में उत्पन्न हुआ होकर के अभी संभव। मानिषादम तू कभी भी शांत नहीं होगा, तुम्हारा चित्त सब समय अशांत रहेगा, अब फिर इस वन में कभी नहीं आना। जाओ तुम्हारा काम मोहित एक पक्षी, और इसी अवस्था में तुमने मारा बिना कारण का, इतना निश्चित। थोड़ी देर में एक दो बार उसका उच्चारण किया, थोड़ी देर के बाद में ऋषि तो थे ही, अरे मैंने क्या कर डाला ये बेकार का, ये तो प्राणियों का ऐसा होना जाना होता ही रहता है, कितने प्राणी मरते हैं कितने, ये तो जन्म और मरण लगा हुआ है, मैं इसमें कहीं छुप हो गया, मुझे तो छुप नहीं होना चाहिए। महाभारत में इतने लोग मरे तो कृष्ण छुप दूंगे, अर्जुन छुप दूंगे, कृष्ण का जब उनको ज्ञान मिले, युधिष्ठिर इत्यादि सब शुद्ध हो गए, परंतु हमें शांति नहीं मिल रही। फिर हम पितामह के यहाँ जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं व्यास जी के यहाँ, कभी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं शांति मिल रही। फिर अंत में क्या हुआ? तो उसी तरह से जब इन्होंने विचार किया, आत्मा का विचार किया, तो वो शांत हो गया। मुझे तो क्रोध नहीं होना चाहिए था, ये तो शरीर मरा है, आत्मा तो मरी नहीं, कि मुझे ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सोच करके कुछ चिंतन करते हुए लौटे आश्रम में और विचार के लिए, ये जो मैंने कहा भी संपादे, ये तो चरणबद्ध छंदोबद्ध अलंकारों से संबंधित एक सुंदर छंद बन गया है। यह पहला ही विश्व का यह पहला छंद है।